चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक 32। अगस्त्यः प्राग् दुहितरम् उपये मे धृतव्रताम् यस्याम् दृढच्युतो जात इत्म वह आत्मजो मुनिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इत्मवाह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय या भक्ति लता मलयध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती हैं। असिते क्षणाम कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी पूजा के लिए प्रयुक्त है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़ व्रत है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्मयोग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर या दृढ़ है तो वो नहीं गिरता। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और दृढ़च्युत से इत्मवाह उत्पन्न होता है। इत्मवाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समिधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर होने पर उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदर्शों के दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। अनुवाद को दोहराइए। हरे कृष्णा। नारद मुनि यहाँ पर राजा प्राचीन भरिष्यत को राजा पुरंजन की काल्पनिक कथा बता रहे हैं। जैसे जैसे ये कथा चलती है हमें याद रखना चाहिए कि ये काल्पनिक कथा है जो नारद मुनि बता रहे हैं। हालांकि राजा पुरंजन या राजा प्राचीन भरिष्यत इस कथा के बाद में समझ लेते हैं कि पुरंजन तो मैं ही हूं, किंतु ये जो भविष्य की बात यहां की गई है कि मलयध्वज के बारे में इत्यादि, ये तो भविष्य की बात है, अब नहीं है। लेकिन फिर भी इन सारे कथाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह बताया जाता है कि मलयध्वज राजा और वैदर्भी देवी उनकी कन्या हुई थी, जो श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी, जो हमेशा श्री कृष्ण की ओर देखती थी और सोचती थी उनके बारे में। आपको याद होगा कि राजा पुरंजन, उनका अगला जन्म स्त्री रूप में हुआ और विदर्भ के राजा की कन्या के रूप में जन्म हुआ, तो उनका नाम हुआ वैदर्भी। वैदर्भी का विवाह एक राजा से हुआ जिनका नाम था मलयध्वज। राजा मलयध्वज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो मलयध्वज और वैदर्भी देवी का विवाह जब हुआ तो उनकी कन्या हुई जो अच्छी भक्त थी, और उस कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। ये अगस्त्य मुनि वो अगस्त्य मुनि नहीं है जो इतिहास में विख्यात हैं, जो दक्षिण भारत में है, जिन्होंने विंध्याचल को ऊपर बढ़ते हुए रोका था। तो ये अगस्त्य मुनि काल्पनिक हैं। अगस्त्य यह मन के सूचक हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, और हम इससे ये समझ सकते हैं कि मुनि भी इंद्रियों और मन का सूचक है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं रहती हैं, इंद्रियां मन के वश में रहती हैं और मन को बुद्धि के वश में रहना चाहिए और बुद्धि को शास्त्रों के वश में या शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, तब व्यक्ति ठीक ठाक अपना जीवन चला सकता है। जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो फिर हमारा मन हमारे नियंत्रण के बाहर चला जाता है और हमारे लिए केवल कष्टों का कारण बन जाता है। जब हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के सेवा में केंद्रित किया जाता है तब हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। राजा अम्बरीश के बारे में बताया जाता है, सब मनः कृष्ण पदारविंदयोः, कि उनके मन का प्रयोग सदा वो कृष्ण के स्मरण के लिए किया करते थे, मन में और कोई विचार नहीं लाते थे। किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाए, यही एकमात्र विचार उनके मन में हमेशा रहा करता था। और जब हमारे इंद्रियां कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल की जाती हैं तो इस कार्य को भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हमारे ऋषिकों को या इंद्रियों को ऋषिक के ईश्वर कृष्ण, जिनको ऋषिकेश कहते हैं, उनकी सेवा में लगाया जाता है तो इसको भक्ति कहते हैं। और ऐसे भक्ति करने से हम सारे उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि मतलब ये झूठे शारीरिक उपाधि, जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, अमेरिकन हूं, ये सारे उपाधियां शरीर से संबंधित हैं, इसलिए ये झूठे हैं, मिथ्या हैं। हमारी सच्ची उपाधि तो ये है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम भक्ति करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम सारे झूठे उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, और हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का लाभ ये है। लेकिन जब हम हमारे मन और इंद्रियों को असत में या संसार के झूठे विषयों में, भोग के विषय में लगाते हैं, तो मन हमेशा चिंतित रहता है। सदा समद्विग्न धियाद असत ग्रहात। प्रहलाद बताते हैं कि जब हम असत को ग्रहण करते हैं तो मन सदा चिंतित रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब भक्ति मार्ग को स्वीकार करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करें। राजा मलयध्वज महान भक्त थे। तो उनकी पुत्री वो भी अच्छी भक्त निकली। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पुत्री, हालांकि श्लोक में उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो भक्ति लता की सूचक है। भक्ति लता वो लता है जो बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन जाता है और वृक्ष के अंततः फल हो जाते हैं, और ये फल जो है इसको कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इस भक्ति लता बीज के बारे में चर्चा करते हैं चैतन्य चरितामृत में, और कहते हैं कि जैसे जैसे भक्ति लता बीज बोया जाता है अच्छे हृदय रूपी मिट्टी में, तो फिर ये बढ़ता जाता है, और उसका जब पोषण होता है, जल दिया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, तो वो लता बढ़ते 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 इस ब्रह्मांड के आवरण का छेद करके भगवान के धाम में चली जाती है और अंततः कृष्ण लोक में पहुंचकर वहां फल प्रदान करती है, और वो फल है कृष्ण प्रेम। तो भक्ति लता ये पुत्री, उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम है दृढ़च्युत, क्योंकि दृढ़च्युत एक दृढ़ संकल्प या एक स्थिर मन का सूचक है। जब हम भक्ति करते हैं तो खुद ब खुद जब मन वश में आ जाता है तो मन दृढ़ भी बन जाता है भक्ति मार्ग में। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, व्यवसायात्मका बुद्धि एक एह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका मन केवल भगवान की सेवा के ऊपर केंद्रित रहने की वजह से स्थिर रहता है, मन विचलित नहीं होता, इधर उधर भटकता नहीं है। भले ही नौसुखीय अवस्था में मन भटकता हो, हम कभी कभी डावाडोल भी हो जाते हैं, लेकिन जब परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं उस समय मन स्थिर रहता है, कभी भी डगमगाता नहीं है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं लगता और केवल इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करता है तो उसका चित्त इधर उधर फैला हुआ रहता है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कभी स्थिर नहीं हो सकता उसका मन, क्योंकि इस संसार की रचना भगवान ने इस तरह से की है कि जो विषयों का भोग करना चाहता है वो विषय उसे कभी भी ज्यादा समय के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते। ये विषय भोग की पहचान है। किसी वस्तु से हम थोड़ा कुछ आनंद प्राप्त करते हैं और फिर उस वस्तु से हम उब जाते हैं, या तो फिर उस वस्तु में वो सुख प्रदान करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो हम दूसरे विषय पर जाते हैं, फिर तीसरे। इस प्रकार से हम भटकते रहते हैं, एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे। इसलिए मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। मनोरथे नासति धावतु बहि। मन के रथ पे सवार होकर इधर उधर बाहर की इंद्रिय विषयों के ऊपर के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है उसका मन स्थिर हो जाता है। व्यवसायात्मका बुद्धि। हालांकि मन कभी कभी तकलीफ भी दे, मन कहे भी कि हमें होटल में जाना चाहिए, हमें कोई वर्जित कार्य करना चाहिए, या हमें सुबह नहीं उठना चाहिए, या आज माला नहीं करेंगे, मन तकलीफ देता है, लेकिन दृढ़ व्रता, क्योंकि हमने भक्ति का आश्रय लिया है, कृष्ण का आश्रय लिया है, इसलिए हमारे शुद्ध बुद्धि से हम मन को वश में कर सकते हैं और कहते हैं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी कष्ट हो हमें 16 माला जाप कम से कम आज करने चाहिए, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में बताया है, वैष्णवों ने बताया है। तो इस प्रकार से मन को जीत लेना चाहिए, और इस तरह से व्यक्ति दृढ़च्युत बन जाता है। दृढ़च्युत मतलब दृढ़ता की वजह से जो च्युत नहीं होता, च्युत मतलब जिसका पतन हो जाता है। कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जिनका पतन कभी नहीं हो सकता। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका मन सदा च्युत अवस्था में रहता है, छोटी छोटी चीजों में मन गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोग के विषय के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के भक्त, खास करके जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो केवल कृष्ण और कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं। इसलिए शरीर का बात, शरीर की बात तो दूर है, लेकिन मन से भी उनका पतन नहीं होता है। और इस तरह से यहां बताया गया है कि भक्ति लता का पुत्र यह दृढ़च्युत। और जब व्यक्ति दृढ़ हो जाता है भक्ति में, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो गुरु की सेवा में जाता है, गुरु के आदेशों का पालन दृढ़ता से करता है। इसलिए दृढ़च्युत के पुत्र का नाम था इथमवाह। इथमवाह, इथम मतलब जो समिधा यज्ञ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और वाह मतलब जो ले जाता है। तो पहले ये हुआ करता था कि जब शिष्य गुरु के आश्रम में जाता था, तो फिर वो यज्ञ की समिधाओं को लेकर गुरु के पास जाता था, खास करके जो लकड़ियां वगैरह हैं यज्ञ में आहुति डालने के लिए जो जलाए जाते हैं। तो इसलिए शिष्य को कभी कभी समित पाणी कहा जाता था। समित मतलब ये समिधाएं, समिधा जो लकड़ी होती है जलाते हैं यज्ञ में। तो इसलिए यहां पर उसी श्लोक को प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं यहां पर, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये तद विज्ञान अर्थम, वो विज्ञान कौन सा, आध्यात्मिक ज्ञान, वो भगवान के बारे में विज्ञान, ये विज्ञान जो जानना चाहता है, तद विज्ञान अर्थम, तो वो क्या करता है, स गुरुम एव अभिगच्छेत, उसे एक गुरु के पास जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके बारे में कोई चयन नहीं करना है कि जाऊं नहीं जाऊं, नहीं गुरु के बिना हो सकता है, नहीं। अभिगच्छेत शब्द का तात्पर्य है कि हमें जाना एक गुरु के पास अनिवार्य है, अवश्य जाना चाहिए, उसके बिना और कोई चारा नहीं है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत, और कैसे जाना चाहिए गुरु के पास, समित पाणी ही, पाणी मतलब हाथ, इसलिए भगवान को चक्र पाणी कहते हैं, गदा पाणी कहते हैं, जो अपने हाथों में करकमलों में चक्र गदा इत्यादि धारण करते हैं। तो समित पाणी ही, समित मतलब समिधा। तो यज्ञ के लिए जो लकड़ियां हैं वो लेके जाते हैं हाथ में, शिष्य को जाना चाहिए ऐसे, और गुरु के लक्षण भी दिए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मतलब जो श्रुति हैं, जो उपनिषद वेद शास्त्र हैं, उनमें विद्वान हैं, उनको उनका मूल निष्कर्ष पता है, और वो शिष्य को समझा भी सकते हैं उसके बारे में। ब्रह्मनिष्ठम मतलब आध्यात्मिक स्तर में स्थित है, देह बुद्धि में शारीरिक भावना में स्थित नहीं है वो। तो इस प्रकार से दृढ़व्रता उसका पुत्र हुआ इत्मवाह। मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब माता पिता भक्ति में रहते हैं, कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका पुत्र भी अच्छा कृष्ण भक्त बन सकता है। और खास करके अगर अच्छे संस्कारों का, सारे जो संस्कार हैं वो किए जाएं, और घर में अच्छा वातावरण भक्ति का बनाया जाए, तो जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो भी अच्छे कृष्ण भक्त बनेंगे। इस प्रकार से यहां पर नारद मुनि राजा पुरंजन के अगले जन्म की वंशावली का वर्णन यहां कर रहे हैं। आज दो और कई महत्वपूर्ण घटनाएं आज हुई हैं, एक तो गोवर्धन पूजा, लेकिन गोवर्धन पूजा का विषय बड़ा लंबा है, इसलिए आज हालांकि ये तिथि है, फिर भी गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा हम रविवार को करेंगे, जबकि ये उत्सव हम मनाने वाले हैं। और आज बलि दैत्यराज पूजा भी है। बलि दैत्यराज मतलब वही बलि महाराज जिनका उद्धार भगवान ने वामन देव के रूप में किया था, और इस दिवस पर भगवान वामन देव ने बलि महाराज को वरदान दिया था कि इस समय इस दिवस पर आपको वो सारे पुण्य मिल जाएंगे जिन्होंने कि ऐसे लोगों ने की थी पहले, जो आपकी पूजा इस दिवस पर नहीं करते हैं, या तो फिर जो योग्य व्यक्तियों को जो दान देते हैं, अयोग्य व्यक्तियों को, क्षमा की, जो अयोग्य व्यक्तियों को दान देते हैं, तो ऐसे लोगों के उस समय तक जो भी पुण्य हैं वो आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बलि महाराज का स्मरण नहीं करता है कम से कम इस दिवस पर, उसने आज तक जो भी पुण्य किए हैं वो उसके क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या जो व्यक्ति इस प्रकार से अयोग्य व्यक्तियों को दान देता है लेकिन बलि महाराज की पूजा नहीं करता आज के दिन, तो उसके आज तक जो भी पुण्य किए हैं वो क्षीण हो जाते हैं। कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि हमें बलि महाराज को याद करना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत गुणगान करना चाहिए, कम से कम स्मरण तो करना चाहिए, क्योंकि बलि महाराज भगवान के एक महान भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, और उनकी जो प्रार्थना की जाती है उनमें, उसमें यह भी कहा जाता है, उनको ये शब्द प्रयोग किया जाता है, भविष्येन्द्रिय। कल हम चर्चा कर रहे थे भागवत क्लास में कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, और 8वें मनवंतर में बलि महाराज जो कि इस समय सुतल लोक में निवास कर रहे हैं वो इंद्रदेव बनेंगे। इसलिए उनको बलि महाराज की जो पूजा होती है आज के दिवस पर, जिन श्लोकों से, प्रार्थनाओं से उनको संबोधित किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, उसमें उनको भविष्येन्द्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में वो इंद्रदेव बनने वाले हैं। तो आज के दिवस पर हालांकि बलि महाराज ने अपना शरीर, अपना सब कुछ भगवान वामन देव को अर्पण किया था आत्मनिवेदनम, फिर भी वामन देव ने उनको बड़ी कठोरता से रस्सी से बांध कर एक कैदी के समान रख लिया। तो बलि महाराज हालांकि अपने राजधानी से ले, भगवान वो ले गए उनको और पाताल लोक तक ले गए, फिर भी बलि महाराज ने कोई शिकायत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, लेकिन केवल अपना सर नीचे रख के भगवान के शरण में रहे। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया बलि महाराज को। तो ये आज के दिवस हुआ, इसलिए बलि दैत्यराज पूजा कही जाती है। ये कर्मकांड में भी किया जाता है, लेकिन जो भक्त हैं उसे भक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं कि बलि महाराज वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त हैं। आज और एक तिथि है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रसिकानंद प्रभु, जो कि एक बड़े महान वैष्णव हमारे संप्रदाय में रहे हैं, उनका आविर्भाव दिवस है। तो रसिकानंद प्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष में यहां लोग अभी उत्सव मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो रसिकानंद प्रभु का जीवन चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनके बारे में विस्तार में सुनने के लिए आज समय नहीं होगा, फिर भी संक्षेप में 2-4 शब्द उनके बारे में कहना योग्य होगा। जानते हैं कि जो पुस्तक वितरण का कार्य भागवत और गोस्वामियों के विरचित जो ग्रंथ हैं उनका वितरण करने की जो सबसे पहली पार्टी वो 3 भक्तों की थी। प्रभुपाद जी ने तो पुस्तक वितरण का कार्य बड़े जोरों से पृथ्वी भर में चालू किया, उसके पहले भारतवर्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ठाकुर ने चालू किया, उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कनाडा में उनके किताब भेजे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो पुस्तक वितरण का कार्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में चलते आया है, लेकिन बड़े 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 पैमाने से पर ये जो करने का श्रेय है ये 3 भक्तों को जाता है। उनका नाम आपको पता है? श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीन। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर वो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, और श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु ये बंगाल के एक वैष्णव सन्यासी, वैष्णव भक्त हृदय चैतन्य उनके शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु का पहला नाम था दुखी कृष्णदास, फिर स्वयं राधा रानी का ने उनको दर्शन दिया, ये लंबी कहानी है, बहुत मधुर कहानी है, और उनका नाम फिर स्वयं राधा रानी ने रखा श्यामानंद, दुखी कृष्णदास से उनका नाम हुआ श्यामानंद। तो श्यामानंद पंडित उनके कई शिष्य हुए, उनमें से एक महत्वपूर्ण शिष्य हैं रसिकानंद या रसिक मुरारी। ये उत्कल या उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ 1590 में। वैसे इनके बारे में बताया जाता है इतिहास में कि उस समय उत्कल में, जैसे कि बंगाल में हुआ करता था, समय बहुत बुरा था, लोग बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं रखते थे, नाना प्रकार के पाप करते थे, और इतनी बुरी दशा हो गई कि सभी लोग केवल पैसा 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 उसके पीछे पड़े थे। उत्कल के राजा भी वैसे और उनकी प्रजा भी वैसे ही, यथा राजा तथा प्रजा, तो दोनों एक तरह के थे। और इतना सब पाप करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नामो निशान किसी भी घर में नहीं दिखाई पड़ते थे, इसलिए लक्ष्मी देवी वहां से दूर चली गई, क्योंकि उनके पति की सेवा नहीं हो रही थी वहां पर, तो लक्ष्मी देवी नाखुश होकर वहां से चली गई, और सब लोग गरीब थे, वह गरीब बन गए बाद में। लेकिन थोड़े बहुत जो भी वैष्णव उस समय उत्कल में थे, वो जब भी उनको देखते थे तो उनको दोषी ठहराते थे कि हमारी गरीबी सब आप सबकी वजह से है, तो वैष्णव सब दशा देखकर बहुत दुखी हो जाते और भगवान श्री कृष्ण से बड़े तीव्रता से, हृदय से प्रार्थना करते कि जो दशा अभी लोगों की यहां है वो इतनी बुरी है कि इसका कोई उपाय हमें नहीं लग रहा है, हमारे हाथ से बाहर है, तो अगर आपके कोई शुद्ध भक्त को आप आपके धाम से यहां भेजेंगे तो वही एकमात्र उत्कल का उद्धार कर सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो बार बार तीव्रता से जब उत्कल के वैष्णवों ने प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उत्कल में ऋषिकानंद का जन्म हुआ। उत्कल में एक प्रांत है मल्लभूमि, जिसमें एक शहर है जिसका नाम है रोहिणी। उस समय ये रोहिणी शहर कटक, जो कि उस समय उत्कल का राजधानी थी, आज भी बड़ा शहर है उड़ीसा में, कटक जितना ही बड़ा हुआ करता था, और वहां कृष्ण भक्त थे लेकिन बहुत कम, और हालांकि बाकी लोग जो ब्राह्मण इत्यादि थे, सन्यासी भी रहा करते थे वहां पर, लेकिन वो लोग कृष्ण भक्त नहीं थे। तो वहां के जो राजा थे उस शहर के, रोहिणी शहर के, वो एक कृष्ण भक्त थे जिनका नाम था अच्युत। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बड़े सज्जन थे, सद्गुण संपन्न थे, और एक बार उस गांव में रोहिणी में एक ब्राह्मण उत्कल के दूसरे भाग से आए। उस ब्राह्मण का नाम था हलधर। उसकी सारी संपत्ति यवनों ने या मुसलमानों ने चोरी कर ली थी, इसलिए उनके पास कुछ रहा नहीं था, इसलिए हलधर जो है वो अपने पत्नी और अपनी कन्या को लेकर वो रोहिणी में आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रोहिणी के राजा वो बड़े धर्मपरायण व्यक्ति हैं। वहां पे आकर गोपी मंडल नाम के एक व्यक्ति के घर में वो रहने लगे। एक बार श्री अच्युत वहां गोपी मंडल के घर में आए और उन्होंने हलधर की पुत्री जिसका नाम था भवानी उसको देखा, और फिर अच्युत ने गोपी मंडल से भवानी के बारे में पूछताछ की और फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। और हलधर ने यह सुनी बात तो बहुत प्रसन्न हुए और भवानी भी उसी प्रकार की अच्छी कृष्ण भक्त थी जैसे कि अच्युत थे। तो इस प्रकार से अच्युत और भवानी का विवाह हुआ। आगे चलकर एक पुत्र हुआ और वो पुत्र थे रसिकानंद। जब वो पुत्र का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि सब जगह एक बहुत ही शुभ और पवित्र वातावरण जैसा निर्माण हो गया और सारे जो ज्योतिष वगैरह आए थे वहां वो भविष्यवाणी करने लगे कि आपका लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा और सारे उत्कल को बदल डालेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत शुद्ध भक्त निकलेगा, बल्कि ये तो नारायण तुल्य है। और इस प्रकार से पड़ोस के जो महिलाएं आई थीं, उस बालक को देखकर वो भी प्रशंसा करने लगी कि ये तो कितना सुंदर बच्चा है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के समान दिख रहा है। तो ये सब बातें सुनकर कि माता भवानी को बहुत प्रसन्नता हो जाती और बचपन से ही ये बालक कृष्ण भक्ति के लक्षण दिखाते थे। वास्तव में जब ये अपने मां के गर्भ में थे तो दयाल दासी नाम की एक व्यक्ति वहां, एक महिला वहां रहा करती थी घर में, तो वो हमेशा श्रीमद् भागवत भवानी देवी को सुनाया करती थी। और जैसे कि प्रहलाद के साथ में हुआ, ठीक उसी तरह से रसिकानंद के साथ में भी हुआ। तो मां के गर्भ में ही ये रसिक मुरारी वो भागवत सुना करते थे। और पहले से तो वो नित्य सिद्ध जीव हैं, भगवान के धाम से आए थे और इधर आकर भी मां के गर्भ में भागवत सुनते रहते थे। तो जन्म लेते ही मां के गर्भ से बाहर आते ही वो शुद्ध भक्त थे कृष्ण, भगवान कृष्ण के। तो कभी कभी जब अपने बचपन में ही अगर वो श्रीमद् भागवत सुनते थे या कृष्ण का नाम सुनते थे तो तुरंत रोना शुरू कर देते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो उनकी माता भवानी बहुत कुछ करके शांत करने का प्रयत्न करती थी, सोचती थी कि शायद इसको भूख लगी है, लेकिन दूध पिलाने के बाद भी बच्चा शांत नहीं होता था, रोते रहता था। कोई समझ नहीं सकता था कि वास्तव में ये इसलिए रो रहा है कि वो कृष्ण के बारे में सुन रहा है, कृष्ण की कथा सुनकर उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रहा है। सब लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा है, शायद उसको कोई दुख है, कोई कष्ट है, इसलिए रो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से रसिकानंद ये आगे बढ़ते गए, नामकरण संस्कार हुए, ऐसे कई लीलाएं बचपन में करते रहे। और अंत में जब बड़े होकर शिक्षण का समय आया तो मिश्र नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और आगे चल के और एक कृष्ण भक्त थे जिनका नाम था हरि दुबे। हरि दुबे के साथ में जाकर वो भागवत पढ़ा करते थे, साथ में अन्य कई शिष्य भी हुआ करते थे। और एक बार जब हरि दुबे और रसिकानंद अन्य शिष्यों के साथ में श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे तो यह प्रसंग आया कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए हैं और सारे गोपियां वहां पर विरह में बड़ी तड़प रही हैं। तो उस समय इस प्रसंग को सुनकर रसिकानंद जो कि केवल बालक थे वो बहुत रोने लग गए। जब रोने लग गए तो उनके मित्र जो थे वो उनको समझ में नहीं आया, वो कहने लगे अरे रसिक के पिता तो रोहिणी के राजा हैं, फिर उसको कौन सी चीज की कमी है कि ऐसे रो रहा है। और उन्होंने शांत करने का प्रयास किया रसिकानंद को, लेकिन वो शांत नहीं हुए। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों इतना दुखी है, क्या बात है इसकी, क्या समस्या है, क्यों दिन भर रोता रहता है, क्या इसके हृदय में दुख है। लेकिन वो अपने दुख को समझा नहीं पाए, अपने मन की बात को समझा नहीं पाए। और फिर इसके बाद अपने पाठशाला से सीधे वो जंगल की ओर निकल पड़े। जब उसके मित्र पूछ रहे थे क्या समस्या है तुम्हें, राजा के पुत्र हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या कमी क्या है तुम्हें, तो सीधे जंगल में चले गए। रोते रोते भाव विभोर होकर अपने हृदय में केवल श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए और जंगल में केवल ये हाहाकार करते जा रहे थे कि हे कृष्ण, इतनी क्रूरता तुमने क्यों की? तुम नहीं जानते कि देखो वो गोपी कितनी तड़प तड़प कर वहां पर प्राय प्राण को त्याग रही है। वो फूट फूट कर उधर दूसरी गोपी रो रही है क्योंकि आप उनको सब छोड़कर आप मथुरा चले गए और फिर वहां बेहोश होकर वो गिर पड़े। जब श्री अच्युत को रसिकानंद के पिता उनको पता चला कि उनका लड़का जंगल में गया है जहां की खतरनाक पशु रहते हैं, तो बड़े चिंतित हुए और उन्होंने अपने कई नौकरों को सैनिकों को भेजा और फिर वो जंगल से उसको लेकर आए वापस। वो बेहोश अवस्था में पड़े थे वहां पर, तो किसी ने किसी तरह से उनको फिर से होश में लाया गया और अच्युत बड़े बेचैन थे कि क्यों मेरा लड़का इतना दुखी है। बहुत तरह से उनको सुखी करने का प्रयास किया, बहुत कुछ कहने लगे, लेकिन रसिकानंद वैसे अपने मन की बात को समझा नहीं पाए और अंततः वो दुबे जी के पास आए, हरि दुबे, जो कि उनके शिक्षक थे, अध्यापक थे, और उनसे कहा कि आप कुछ समझा के प्रयास कीजिए कि क्या बात है, मेरे बच्चा क्यों इतना दुखी है ये। तो उस समय हरि दुबे ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, इसके जो ये आंसू है ये दुख के आंसू नहीं है, इस संसार के दुख के आंसू नहीं है, ये कृष्ण भक्ति के आंसू है। तो हरि दुबे ने क्या किया कि सारे श्रीमद् भागवत का सार उन्होंने, खास करके दशम स्कंद का सार उन्होंने भागवत अमृत नाम के एक ग्रंथ में किया और फिर उन्होंने रसिकानंद से कहा कि देखो रसिक, जब श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन छोड़ के चले गए, फिर वो 3 महीने के बाद लौटकर आए, और इस बात को केवल वो लोग जानते हैं जो वास्तव में शुद्ध कृष्ण भक्त हैं और जो कृष्ण लीला के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन से दूर कैसे रह सकते हैं। जिस प्रकार ब्रजवासी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो जल्दी से लौट कर आए। तो रसिकानंद ने बात सुनी तो शांत हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, तो कृष्ण आ गए वृंदावन में और गोपियां शांत हो गई, ठीक है ठीक है, फिर रोना बंद कर दिया। तो जब श्री अच्युत ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और कहा कि आप ही रखो इसको, आप ही देखो अभी कैसे क्या करना है इसके साथ। जिस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो वहां उन्होंने उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई थी। वो ब्राह्मण प्रभु रामचंद्र जी के बड़े शुद्ध भक्त थे और जब उन्होंने निमंत्रण दिया चैतन्य महाप्रभु को कि हमारे घर में आके भोजन ग्रहण कीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वहां पर। जब पहुंचे तो देखते हैं कि उस ब्राह्मण ने कुछ पकाया नहीं था, भोजन तैयार नहीं था, और ये ब्राह्मण बैठ के केवल रो रहे हैं। तो अरे क्या बात है ब्राह्मण, मुझे भोजन के लिए बुलाया और भोजन तैयार नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं उस सोच में पड़ा हूं कि वैसे भगवान श्री राम ने सीता देवी को छोड़ दिया और सीता देवी को वास्तव में अग्नि परीक्षा करनी पड़ी, अग्नि में से उनको गुजरना पड़ा, और रावण जैसे व्यक्ति ने सीता देवी का अपहरण कर लिया और सीता देवी को लेकर लंका में अशोक वाटिका में रखा, कितने दुख की बात है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं, आज ही मेरे मन में विचार आ रहा है और मैं कुछ भी दूसरा, कोई भी दूसरा कार्य नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए दुख के मारे मैं रो रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत शांत करने का प्रयास किया लेकिन शांत नहीं हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो आगे चले अपनी यात्रा में दक्षिण भारत में, तो जब वो श्रीरंगम पहुंचे तो उस समय रंगनाथ के मंदिर में वहां ब्राह्मणों के पास में कई शास्त्र थे, पन्ने थे, उसमें से कूर्म पुराण का भी, कूर्म पुराण नामक शास्त्र भी था। तो उस शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना और यह पढ़ा कि वास्तव में जिस सीता का अपहरण रावण ने किया वो असली सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। और ये बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए, उन्होंने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर वो जो कूर्म पुराण के थोड़े कागज थे वो ले गए और सीधे वापस जब आए उस समय उस ब्राह्मण के पास, तो वहां उसके घर में फिर से आए और उसको बताया, देखो ये प्रमाण है, कूर्म पुराण का प्रमाण है कि जिस सीता देवी का अपहरण रावण ने किया था वो झूठी सीता थी, माया सीता थी। रावण जैसे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं, ये कोई पात्रता नहीं कि वो साक्षात लक्ष्मी देवी सीता देवी को स्पर्श करे। ये कैसे हो सकता है? यहां इसका प्रमाण है, असली सीता देवी तो केवल श्री राम की संपत्ति है। तो जब यह कूर्म ब्राह्मण ने सुना तो उनका दुख मिट गया, शांत हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से रसिकानंद भी हरि दुबे के कहने पर वो शांत हो गए। तो इस प्रकार से कई लीला रसिकानंद ऐसे करते रहे, बड़े विद्वान हुए। और एक बार रसिकानंद को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण ने उनके सामने आकर कह दिया कि हे रसिकानंद, जाओ तुम श्यामानंद पंडित को ढूंढो, क्योंकि मेरा आदेश है कि वो तुम्हारे गुरु होने चाहिए, और दोनों मिलकर तुम उत्कल देश का उद्धार करना। तो भगवान का दर्शन पाकर रसिकानंद भाव विभोर हो गए और केवल उस दिन के बाद श्यामानंद प्रभु के बारे में सोचते रहते थे कि कौन है मेरे गुरु, आएंगे आएंगे। और उधर वृंदावन में श्यामानंद पंडित गोस्वामियों के निर्देशन में गोस्वामियों के आश्रम में रहते थे। श्यामानंद पंडित के मन में सपने में भगवान आए और कहने लगे कि हे श्यामानंद, मेरा आदेश है कि तुम उत्कल में जाओ और वहां रसिकानंद नाम का मेरा शुद्ध भक्त है, उसको अपना शिष्य बनाओ, उसको दीक्षा दो और दोनों मिलकर उत्कल का उद्धार करो। तो ये दो बार उनको सपने आए। हिचकिचा रहे थे श्यामानंद पंडित कि मैं वृंदावन छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन फिर सोचने लगे कि भगवान के आदेश का उल्लंघन भी कैसे कर सकता हूं, मुझे जाना होगा। उधर जीव गोस्वामी के मन में भी, के सपने में भी भगवान आए और उन्होंने कहा कि आप आदेश दीजिए श्यामानंद को कि वो जाए वहां, मैंने 3 बार ऑलरेडी आदेश दे दिया है। तो फिर जीव गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने श्यामानंद को कह दिया कि चलो जाओ अभी। तो श्यामानंद पंडित निकल पड़े और वो यात्रा में भी कई सुंदर लीलाएं हुई। फिर अंततः वो पहुंच गए उत्कल में। वहां एक शहर में एक राजा के दरबार में भागवत कथा चल रही थी और उस कथा में रसिकानंद उन ब्राह्मणों को कई रसवर्धक प्रश्न कर रहे थे। और उस सभा में जब श्यामानंद पंडित आए तो राजा ने उनको देखा, इतने तेजस्वी लग रहे थे, प्रकाशमान लग रहे थे, पता चलता था कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो राजा उठे, सभी लोग वहां उठे, उनका आदर सत्कार किया और कथा चलती गई। श्यामानंद पंडित सारी सभा में हर एक व्यक्ति की परीक्षा ले रहे थे, कौन कौन है यहाँ बैठे हुए, वो तुरंत पहचान गए। हालांकि रसिकानंद और श्यामानंद पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन दोनों आपस एक दूसरे को पहचान गए। कम से कम श्यामानंद ने पहचान लिया कि ये ही होंगे। और बाकी सब ब्राह्मण जब कथा के बाद चले गए, राजा भी चले गए, केवल रसिकानंद वहां पर रह गए। फिर दोनों रसिकानंद जाकर श्यामानंद के पास दंडवत किया। श्यामानंद ने बड़े प्रेम से आलिंगन किया रसिकानंद का और पूछा दूसरों से कि ये कौन है, किन का पुत्र है। फिर बाद में उनको बताया गया कि यही रसिकानंद है। तो श्यामानंद ने फिर बताया कि मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने कहा था कि आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करना है। और इसके बाद में कई महीने वहां श्यामानंद पंडित रहे उस उत्कल में, और रसिकानंद के साथ में उन्होंने बहुत सारे कृष्ण कथा की। दिन रात कृष्ण कथा करते थे और कैसे पूजा करनी है, उपासना करनी है, ये सारी चीजें श्यामानंद पंडित ने रसिकानंद को सिखाई। और इस प्रकार से श्यामानंद पंडित वापस चले गए। उधर रसिकानंद ने भी बहुत प्रचार करना आरंभ किया। उधर तो रसिकानंद इतने शक्तिशाली प्रचारक थे कि सारे उत्कल का चेहरा उन्होंने बदल डाला। और आज तक भी रसिकानंद का नाम बड़ा विख्यात है सारे उड़ीसा में। रसिकानंद बहुत जाने माने एक संत है वहां उत्कल के, जैसे कि यहाँ कर्नाटक में पुरंदर दास हैं और महाराष्ट्र में तुकाराम हैं, तो वहां उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के साथ के बाद में रसिकानंद को बहुत मानते हैं, क्योंकि रसिकानंद ने वहां बहुत प्रचार किया था। एक बार रसिकानंद वहां राजा के दरबार में भागवत की कथा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी भक्त बनाया, और उस समय उनके जो उनका जो मैनेजर था, उनके जो सारे जायदाद देखने वाला, जिनका नाम था रामकृष्ण, वो आके उनके सामने खड़े हो गए राजा के सामने। ये रामकृष्ण वैसे वो भी रसिकानंद के शिष्य थे और बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो उस समय अंदर आए और राजा का ध्यान भागवत कथा से हटकर मैनेजर की ओर आ गया। तो उस समय वो मैनेजर, उन्होंने राजा को उनकी निंदा की, बड़े जोर से कहने लगे, हे राजा, आप तो बिल्कुल नीच व्यक्ति हो, क्योंकि भागवत कथा जब चल रही है आपका ध्यान पूरी तरह से भागवत के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए, लेकिन आपका मन हट गया केवल आपके मैनेजर के प्रति, मतलब मेरे प्रति। वो बोल रहे हैं कि मैनेजर आपके सामने क्या लाएगा, कोई संसार की बातें लाएगा, लेकिन आपका आकर्षण संसार के प्रति इतना है भागवत कथा चलते हुए भी। और इसके बाद में रामकृष्ण ने क्या किया, सीधे राजा को जाकर थप्पड़ मार दिया। सब लोग हैरान हो गए।